मेरे बहुत बहुत प्यारे साथियों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। फ्रेंड्स, आपको याद होगा कि हम लोग आस्था पर बातें कर रहे थे और जैसे कि मुझे उम्मीद थी बिल्कुल वही हुआ। और ढेर सारे मेल मुझे इस जिज्ञासा से भरे हुए मिले हैं कि सर, बहुत से लोग कहते हैं कि आस्था में तर्क की उपस्थिति नहीं होती है और बिना तर्क के आस्था को कैसे स्वीकार किया जा सकता है, इसलिए आस्था बेकार की चीज़ है, यह केवल कहने भर की बात है। बहुत से लोगों ने मेल लिखे और इन मेल लिखने वालों में राजकुमार लड्ढा जी भी हैं फरीदाबाद से, जो मेरे बहुत ही प्रिय छोटे भाई की तरह हैं। मुझे लगा कि डेफिनेटली जब तक मैं उनकी इस जिज्ञासाओं का उत्तर नहीं दूंगा तब तक शायद वो आस्था को इतने बड़े अस्त्र के रूप में उपयोग में न ला सकें। जी हाँ, मैं जानबूझकर इस शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ, अस्त्र के रूप में। अस्त्र क्या करता है? अस्त्र उस समय आप उपयोग में लाते हैं जब आपको अपनी रक्षा करनी पड़ती है, चाहे शत्रु से रक्षा करनी पड़े, चाहे और किसी संकट से, अगर अस्त्र का उपयोग वहां हो सकता हो तो। और वैसे भी जब अस्त्र हमारे पास होते हैं तो क्या आपको नहीं लगता कि हमारे मन में थोड़ा बहुत आत्मविश्वास का भाव भी रहता है कि ठीक है, अगर कोई आ जाएगा तो देख लेंगे, भले उसकी जरूरत ना पड़े, लेकिन अगर अस्त्र हमारे पास हैं तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं हमारा विश्वास या आत्मविश्वास बना रहता है, हम ज्यादा मजबूत होते हैं। इसलिए मित्रों, मैंने जानबूझकर इस शब्द का प्रयोग किया है, अस्त्र। अब मैं तर्क के बारे में कुछ बातें आप सबसे करना चाहूंगा। तर्क हम किसे कहते हैं? तर्क का मतलब केवल यही है कि अगर कोई घटना हो रही है तो उसके कारण को हम जानते हैं, यही है तर्क। हम तर्क पूर्ण तरीके से सिद्ध कर सकते हैं और यह हमारे वेदों में भी और हमारे उपनिषदों में तो खासकर इसका बहुत ज्यादा वर्णन भी मिलता है। खासकर जब आप जो उपनिषद के हिस्से हैं या जो हमारे सांख्य दर्शन हैं, वैशेषिक हैं, मीमांसा हैं, जब आप इन्हें पढ़ेंगे तो इनमें तर्क की ही प्रधानता है, तो तर्क की बात वहां भी की गई है। दोस्तों, तर्क का मतलब हुआ ज्ञान। किसी भी घटना के होने का ज्ञान जब हमें हो जाता है तब हम उसे तार्किक रूप से सिद्ध कर सकते हैं और कह सकते हैं कि यह बिल्कुल वैज्ञानिक तरीका है, यह बिल्कुल सही है। अब मैं एक छोटा सा प्रश्न आप सबसे करना चाहूंगा और प्लीज आप सब इस पर विचार भी करें। क्या इस दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है उन सब के बारे में हम जान गए हैं? इसे आप इस रूप में सोच करके देखें कि क्या तर्क की अपनी कोई सीमा नहीं है? शायद अगर आप पीछे की यात्रा करेंगे तो आपको ज्यादा उत्तर मिल जाएंगे। 100 साल पहले चले जाइए, 100 साल पहले हमारे ज्ञान की सीमाएं क्या थी? भौतिक ज्ञान, फिजिक्स को ले लीजिए, ज्योग्राफी को ले लीजिए, मनोविज्ञान को ले लीजिए, हमारे ज्ञान की जो दूसरी शाखाएं हैं उनमें से किसी को भी ले लीजिए, 100 साल पहले हमारी स्थिति क्या थी? 500 साल पहले हमारी स्थिति क्या थी? अब आप एक प्रश्न करें कि 500 साल पहले का व्यक्ति जब तर्क के बारे में बात कर रहा होता तो वो क्या बातें करता? 5 साल के इस दौर में जो हम वर्तमान तक पहुंचे हैं, बहुत से हमारे सामने तर्क के नए नए रूप सामने आ गए हैं। सन 1800 में एक वैज्ञानिक हुए हैं जिनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, सन 1800 में उन्होंने ये घोषणा की थी कि अब जितने भी वैज्ञानिक आविष्कार इस धरती पर हो सकते थे वो सब हो चुके हैं, अब कोई भी नया आविष्कार नहीं हो सकता, उसकी कोई संभावना नहीं रह गई है। यानी कि सन 1800 के आसपास तक जो भी विज्ञान हमारे सामने उपस्थित था उसको उन्होंने संपूर्ण मान लिया। और विज्ञान में इसलिए कह रहा हूं, विज्ञान का मतलब है तर्क। लेकिन सन 1800 के बाद आज हम 200 साल आगे आ चुके हैं, 225 साल, क्या स्थिति है? और हम नहीं जानते कि 50 साल के बाद क्या स्थिति होगी। ये बात मैं सिर्फ एक तथ्य आपके दिमाग में स्पष्ट करने के लिए कह रहा हूं, वो ये कि हमें तर्क की सीमा को स्वीकार करना होगा। हम इतने महाज्ञानी नहीं हो गए हैं कि हम सब चीजों के बारे में जानते हैं और अब इससे आगे जानने के लिए कुछ नहीं रह गया है। हाँ, अगर हम ये कहते हैं कि अब जानने के लिए कुछ नहीं रह गया और मैं व्यक्तिगत तौर पर सब कुछ जानता हूं तो फिर बात अलग है। ये इसका एक पक्ष हुआ। आपके हाथ में मोबाइल है, मोबाइल का हम सब उपयोग कर रहे हैं, भरपूर उपयोग कर रहे हैं और अलग अलग रूपों में उपयोग कर रहे हैं। क्या नहीं हो रहा है मोबाइल के जरिए, डिक्शनरी का काम कर रहा है, हम बातें कर रहे हैं, हम मैसेजेस भेज रहे हैं, हम फोटोग्राफ्स भेज रहे हैं, हम पढ़ाई कर रहे हैं, हम कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं, हम उसको बकायदे एक तरीके से म्यूजियम की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, अपनी लाइब्रेरी की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं यार? क्या 50 साल पहले या 25 साल पहले, 50 साल पहले की तो बात दूर की बात होगी, क्या 25 साल पहले आप किसी ऐसे यंत्र कि कल्पना कर सकते थे जो आपके हथेली के साइज का होगा और वह इतना चमत्कारिक होगा कि यहां से आप नंबर मिलाइए और दुनिया के किसी भी छोर पर बैठे हुए व्यक्ति से आप बात कर सकते हैं और ऐसे बात कर सकते हैं जैसे कि वह आपके बगल में बैठा हुआ हो। केवल बात ही नहीं कर सकते हैं बल्कि आप उसका चेहरा भी देख सकते हैं, बातचीत करते हुए एक दूसरे के चेहरे भी देखे जा सकते हैं, कोई भी फोटो भेजी जा सकती है, कोई भी संदेश मंगाया जा सकता है, कुछ भी किया जा सकता है। क्या 25 साल पहले हम इसकी कल्पना कर सकते थे? आज ये सारी चीजें हो रही हैं। तो 25 साल पहले अगर इसकी बात की जाती तो ये बात तर्कहीन लगती कि यार इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या तुम पागलों जैसी बात कर रहे हो, लेकिन आज वे सब हमारे सामने हैं। तो दोस्तों, अभी मैंने केवल तर्क की सीमा के बारे में आप सबसे बात की है, इस अनुरोध के साथ कि प्लीज इस पर थोड़ा आप खुद भी विचार करें। कल हम लोग आस्था के बारे में बात करेंगे, फिर देखिए कि दोनों को अलग अलग रख करके कि अब उन दोनों में क्या कोई टकराव है या सामंजस्य है, ये निष्कर्ष आपको खुद ही निकालना होगा। तो दोस्तों, अब मुझे इजाजत दें, नमस्कार।